क्लास है 15 मार्च 1968 बाप इस रथ द्वारा रूहानी बच्चों को जो अपने रथ अथवा आगंश द्वारा सुनते हैं उन्हों के प्रति समझा समझाते हैं रूहानी बच्चों को समझाते हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने आगंश के द्वारा सुनते हैं सुनने वाली रूह है और ये तो समझते हो बाप के साथ बैठे हैं ये बाप टीचर भी है गुरु भी है पहले पहले बाप बाप के आगे जैसे बच्चे होते हैं बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ नहीं जोड़ेंगे अगर हाथ जोड़ते हैं तो समझता हूँ ये बाप नहीं समझते वो साधु संतान समझते हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर के ऐसे हाथ जोड़ने के लिए हिरे हुए हैं गुरुओं साधुओं आदि के पांव पड़ने में हिरे हुए पूरी रीति समझा नहीं है इन बातों को वही बच्चे समझते हैं जिनको बाप समझाते हैं बाप आए ही हैं वर्षा देने के लिए तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कल्प कल्प बाप आते हैं वर्षा देने के लिए इसमें डरने की कोई बात नहीं साधु आदि से डरते हैं कहां शराप न दे देवे जी नाराज न हो जावे तुम बच्चे तो जानते हो बाप बहुत बहुत मीठा है शराब आदि देने की तो बात ही नहीं बाप आए ही है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने इसके लिए पहले पहले तो तुमको ब्राह्मण बनना होता है ऊंचते ऊंच कुल ब्राह्मण होता है देवताओं से भी ऊंच कौन गाए हुए हैं ब्राह्मण गाए हुए देवताएं कौन से युग में होते हैं सतयुग में देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण और ब्राह्मण कौन से युग में होते हैं ब्राह्मण संगम युग में होते हैं तो ऊंचते ऊंच कुल ब्राह्मणों का है और ऊंचते ऊंच युग है संगम युग प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं प्रजापिता है ऊंचते ऊंच अथॉरिटी इस साकार सृष्टि का वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर धर्म पिताओं का भी बाप है उन धर्म पिताओं को कहेंगे ग्रेट फादर्स तो बच्चे भी जरूर ग्रेट होंगे ये समझ की बात है भक्ति मार्ग में तो सब बेसमझ उसको जो आता है सो कह देता है, और जो जिसको मन में आया वो कर देती। क्या क्या कहते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। महर्षि भी कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ये सभी आदतें आते ही मिट जाएंगी। अभी सिवाय योग के कोई भी आदत मिट तो नहीं सकती है। और मिटाने वाला भी जरूर चाहिए। इस समय सभी पतितम प्रधान है। तुम कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण का भी अंतिम जन्म है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते पतित बने, इसमें बड़ी समझ की बात है। अभी देखो गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, परंतु निर्गुण का अर्थ भी नहीं समझते। अभी कोई भी गुण नहीं है। विवेक भी कहता है रावण राज्य में बेगुणी बन गए। निर्गुण बालकों की सोसाइटी भी कितनी बड़ी है, कितने उनके लिए फंड्स निकालते हैं। अभी निर्गुण बालक तो तुम हो, तुमको गुणवान बनाना है। तुम भी पतित कांटे थे, अभी तुम आए हो गुणवान बनने के लिए। वो तो समझते हैं निर्गुण बालक भी बहुत अच्छे और ही नीचे गिरते जाते हैं, और ड्रामा अनुसार नीचे गिरने का ही। चढ़ती कला करने वाला तो एक ही बेहद का बाप है, बाप द्वारा ही सभी का भला होता है। अभी सबका भला तो सत्य में ही होता है और शांति धाम में होता है, ये तो दुखधाम है। दुखधाम में तो सार दुखी है। अभी बच्चे सारे ड्रामा के चक्र को समझ गए हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, पहले तो चक्र में बाप है ना, सुदर्शन चक्रधारी। कौन सा बाप है सुदर्शन चक्रधारी? आत्माओं का बाप तो सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे नहीं, वो तो 84 के चक्र में आता ही नहीं है। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके द्वारा पहले पहले बाप है सुदर्शन चक्र, और अपने 84 के चक्र को बाप ही पहले जानते हैं। तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, परंतु अलंकार तो न बाप को है न तुमको है। ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं। पक्का ब्राह्मण कह बने तब कहने देवता। तो तुमको अलंकार दे नहीं सकते, क्योंकि तुम भी पुरुषार्थी हो। सभी को तो पूरी धारणा भी नहीं होती है। जब पूरे पक्के हो जाते हैं तो बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाता है। ये है ज्ञान की बात। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र को हिंसक बना दिया। इस सुदर्शन चक्र घुमाते जाते थे और असुरों की हिंसा होती जाती थी। दिखाते हैं कृष्ण सुदर्शन चक्र से असुरों को मारते रहते। अब असुरों को मारते हैं या असुरों का अहंकार का गला कटता है? असुरों की आत्मा भी तो अविनाशी है, उनको भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई स्थूल हिंसा बैठ करके की है। क्या क्या अर्थ बैठ निकालने? रथ का पहिया निकाला, उसको उंगली से घुमाया, उसे असुरों के गले कट गए जैसे मैड चैप्स। अभी तुमको सभी चित्रों आदि का अर्थ बताते हैं। उनके अर्थ है अनराइटियस, ये है राइटियस। जो कुछ भी जानते नहीं है वो क्या करके करेंगे? तो तुम बच्चे समझते हो इस रथ पर रथी बैठ नाली सुनाते हैं कि ये सच्ची का चक्र कैसे चलता है, इतने सभी अनेक धर्म कैसे वृद्धि को पाते हैं। पिछाड़ी में सभी का विनाश हो जाता है। बाप आकर वही धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड वाई सेकंड आत्मा जो एक्ट करती है वो एक्ट रिपीट होगी। इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं। दुनिया तो यही है जो नई और पुरानी होती है, और कोई दुनिया नहीं है। वो लोग तो समझते हैं ऊपर में भी कोई दुनिया है। कहते थे चंद्रमा में प्लाट लेंगे, वहां जाकर ये है करेंगे। उनका है ये माया का अतिगमन, साइंस का अतिगमन है। कहां कहां जाते रहते, आगे चल करके नई नई बातें निकालते रहेंगे। सेकंड बाई सेकंड नया नया चलता रहता है। बड़े टेम्परेरी अच्छा रूप भी करके देखेंगे, परंतु फिर पिछाड़ी को विनाश जरूर होना है। इनका कहा जाता है माया का पंप। इन सभी बातों को अच्छी रीति समझना है और समझ करके धारण करना है। तो तुम जानते हो बाबा आया ये है पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना करने। गाया हुआ है स्थापना विनाश और पालना। March 15 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी शंकर द्वारा विनाश करावे ये तो ला नहीं कहता। वो शंकर क्या करेंगे? ये तो शंकर की महिमा में चित्र बनाई दिया है। शंकर कुछ करते भी नहीं है, विनाश भी नहीं करते, फिर महिमा काई की है? जब शंकर करते ही नहीं है, ला नहीं कहता है कि शंकर विनाश करावे, घर महिमा में चित्र क्यों बनाए दिए? इस बात की महिमा। मिसाल दिया, जैसे हनुमान की महिमा दिखाते हैं। क्या महिमा दिखाते हैं? बाढ़ी पूंछ तीन कपि खेला, हनुमान की पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका के सारे वस्त्र, जो भी अच्छे अच्छे वस्त्र थे, और सारे उनकी पूंछ से बांधे गए। वस्त्र माना दे अभिमान रूपी वस्त्र उनकी पूछड़ी में बांध दिए गए, और लंका का सारा तेल भी नहीं, रत नहीं, क्या तेल सारा ही पूछ में उड़ेल दिया गया। आग लगा दी गई, पूछ बच गई और लंका सारी जल गई। ये क्या बात हुई? कैसी कैसी महिमा दिखाते हैं। अरे ऐसा कोई हुआ थोड़े ही है, फिर कैसा हुआ है? कौन सी पूछ की बात है? कोई बंदरों में बड़ा बंदर है जिसकी देह अभिमान की पूंछ बहुत लंबी है। कहते हैं जब बंदरों के हुजूम को पकड़ने जाते हैं तो बड़ा बंदर पकड़ में नहीं आता, छोटे छोटे बंदर साफ पकड़ लिए जाते हैं, उसका देहभान नहीं पकड़ा जा पाता। तो ऐसे ही रावण की महिमा करते हैं, जैसे शंकर रावण हो गया। चित्र ऐसा बनाते हैं शंकर का जैसे रावण, काला काला दाढ़ी वाला, लाल लाल आंखों वाला है, कुछ भी नहीं। रावण का चित्र बनाते हैं। अब रावण क्या चीज है समझते कुछ भी नहीं, पहले तुम भी नहीं समझते थे, ये रथ भी नहीं समझता था। इनका जो रथी है वो अभी समझते हैं और समझा रहे हैं। आप कितना अच्छे से समझाते हैं, आत्मा मानती है बरोबर, हम पतित बन गए। अभी बाप कहते मामी में, मामी कम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, और पुरुषार्थ भी तुमको ही करना है। बाकी वह गुरु लोग तो ढेर हैं, और उन गुरुओं के कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स का नशा, तो वो थोड़े ही इतनी जल्दी छोड़ेंगे। उन गुरुओं का तो तुम कुछ भी ख्याल मत करो। तुम सभी को शांति धाम का रास्ता बताते हो, चक्र के नाली को भी तुम जानते हो कि जो जहां का है उनको वहां ही जाना है। दुनिया की हर चीज और हर आत्मा का एक साइकिल है, अपना अपना पार्ट हर एक को बजा नहीं है, समझने की दरकार नहीं। बिल्कुल पुरुषार्थ कराने वाला और पुरुषार्थ करने वाला ये है। मैं तुमको पुरुषार्थ कराता हूं तो इनका ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ हो जाता है। ऐसे नहीं कि मैं कोई प्रेरणा देता हूं, प्रेरणा का अर्थ कोई है ही नहीं। प्रेरणा अर्थात विचार, बाकी प्रेरणा और कोई चीज नहीं। तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, याद की यात्रा का भी नॉलेज है, चक्र का भी नॉलेज है। बाप कहते मामे कम याद करो, ये याद का रियल ज्ञान है। और ये रियल ज्ञान है ही बाप के पास, वो ज्ञान का सागर है। वो खुद ही आकर के अपनी पहचान देते हैं। बाप कहते हैं तो मुझे बुलाते भी हो ना, ज्ञान सागर को सर्वव्यापी कहना, मिट्टी में मिला देना, ये तो बड़ी भारी मूर्खता हो गई। कितनी ग्लानी कर दी है अभी इन ग्लानी करने वालों सभी का विनाश ड्रामा में लुदा हुआ है। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूं, ऐसा ना हो जो विनाश हो और फिर ये हॉस्पिटल में पड़े पड़े फटकते रहे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में विनाश हुआ छोटा सा, हिरोशिमा नागासाकी दो शहर भस्मीभूत हुए और उस समय के अंधे लूले कंगड़े जिनके ऊपर उसे विनाश का असर हुआ और जीवित तो बने गए, वो आज भी तड़पते हैं हॉस्पिटलों। तो बाप नहीं चाहते ऐसे तड़पते रहे। फटकते रहे नहीं, चीजें ऐसी बनाते रहते हैं जो सेकंड में विनाश हो जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति होती है तो सेकंड में विनाश भी चाहिए। तुमको ज्ञान भी देते रहते हैं और ये भी ट्रायल कराते रहते हैं, बारूदादी बनाते जाते हैं। है ये बेहद की बात, ये सूरज चांद आदि इस बड़े मांडवे की शोभा है। इस मांडवे में दिन और रात भी जरूर चाहिए। फिर बेहद के दिन रात भी होते हैं। बेहद का दिन कौन सा है? सत्युग त्रेता बेहद का दिन और द्वापर कलयुग बेहद की रात। बेहद की रात है पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बनेगी। बहुत जास्ती मनुष्य हो जाएंगे तो फिर खाना आदि कहां से आएगा? अभी तो तत्व भी तम प्रदान हो गए, समुद्र भी देखो कितना दुख देता है, स्टीमर आदि डूब जाते हैं, ऐसे कैसे अकाल मृत्यु होती है। वहां नई दुनिया में तो सुख की दुनिया है, वो सोझने की दुनिया है, बेहद का दुन है, दुख की कोई बात नहीं। उसका तो नाम ही है हेवन और ये लक्ष्मी नारायण हेवन के मालिक हैं। अभी तुमको नई दुनिया की एक्यूरेट नॉलेज मिलती है, पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तो अभी तुम पूछेंगे क्या? बाप तो आप ही सब कुछ जान बताते रहे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, बाकी आलतू फालतू में प्रश्नों आदि में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जरूरी पुरुषार्थ करो, अपना पुराना कचरा तो निकालो। जब आत्मा में से कचरा निकल जाएगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, तो सारे प्रश्नों का समाधान खुद ही हो जाएगा। तुमने 84 का चक्र लगाया है, ये समझ तो बुद्धि में आ गई है। ये चक्र की नाली जो तुम्हारी बुद्धि में हो, परंतु बाप की याद हो तब आत्मा ये शरीर छोड़ करके भागे। ऐसी अवस्था हो तो पद भी पा सकते हैं। तुमको पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ट्रांसफर हो जाना, ये तो तुम्हारा एक क्लास है। कौन सा है? जो 68 की वाणी है उस समय ये महावाक्य बोला, ये तो तुम्हारा कक्षा एक का क्लास है। मना यहां तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ते थे 68 में? जो बेसिक नॉलेज लेते थे वो ABCD पढ़ने की नॉलेज है, फिर दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते। तुमको तो मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर होना है। तुमको खातरी है, कल्प कल्प हम बाप से नारे सुनते, फिर भूल जाते। ड्रामा में ऐसी ही मूड है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी ये गीता का एपिसोड चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग है, तो ये युग बदल रहा है। और बदलना माना नीचे से ऊंच जाना, ऊंच बनना। अभी हमारे दुख के दिन गए कि गए? बच्चों को आसरा देते हैं कि बच्चे बाकी थोड़ा समय है, विनाश के बाद शांति हो जाएगी। बाकी ऐसे नहीं है कि सब मिलकर के एक हो जाएंगे। ये तो झाड़ है, नंबर बार आते रहते हैं। सभी धर्म मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? बाप आकर जो धर्म स्थापन करते हैं वो तो है ही एक धर्म, उन विचारों को तो बिल्कुल ही पता नहीं। पत्थर बुद्धि है, तो बच्चों को वंडर खाना चाहिए, क्या कहते हैं कौन सा एक धर्म हो जावे ये तो बताओ, सब मिलकर के एक कैसे हो जावेंगे? जिसको जो आया सो कहते हैं। तुमको तो अभी अथॉरिटी मिली हुई है, तुम जाकर उनसे पूछ सकते हो कि एक धर्म किसको कहा जाता है। मार्च 1968 आगे भी कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक धर्म हुआ हो? विश्व में शांति तो नई दुनिया सतयुग में थी, वहां दुख की कोई बात नहीं हो सकती। तो देखो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कि सर्प ने डसा तो कृष्ण काला हो गया, राम की सीता चुराई गई, आठवें अपने गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ। अब सत्ययुग में 8 बच्चे पैदा होते हैं क्या? ये तो छी दुनिया बना दी और नाम रख देते हैं सत्ययुग। अरे वहां तो एक ही धर्म होता है, सारी आयु में एक ही बच्चा पैदा होता है, 8वां गर्म फिर काहे का? ये सब भक्ति मार्ग की दुर्गति मार्ग की बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं हमको ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। क्या दान ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है? भक्ति मार्ग की बात तो बताई। आठवें गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। तो क्या इसका अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ कि 8 धर्मों में जो 8 विशेष आत्मय है, सत्युग के 8 नारायण, उनमें से पहला नारायण ही कृष्ण के रूप में जन्म लेता है और यहां संगम युग में पुरुषार्थ करता है 16 कला संपूर्ण बनने का। परंतु आठवां गर्भ नहीं है, वो 8वें ज्ञान गर्भ की बात है। सात बच्चे वो जिनको कंस कोष लेता है, भिखारी बनाए देता है, ब्राह्मण तो बनते हैं, पूरा ही समर्पित होकर के ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, परंतु फिर भी माया उनको छोड़ती नहीं, कृष्ण बच्चा बच जाता है, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। मुकर्र रथ की बात तो 8वें गर्भ की बात नहीं है, ये ज्ञान गर्भ की बात है। इससे पहले जो 7 बच्चे ज्ञान धारण करते हैं वो अधूरा ही ज्ञान धारण कर पाते हैं, इसलिए अधूरे अधूरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं द्वापर युग से। सत्युग का पहला ही नारायण 16 कला संपूर्ण होता है, बाकी जो भी नारायण आते हैं वो कम कला वाले आते हैं, क्योंकि उन्होंने संगम युग में कम पुरुषार्थ कर पाया। तो ये ज्ञान देने के लिए बाप को आना पड़ता है, ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस ड्रामा में कोई को जास्ती सुख और कोई को थोड़ा सुख, कोई कोई आत्मा तो 82-83 जन्म के सुख में रहती है और कोई आत्मा एक जन्म में ही आधा सुख और आधा दुख भोग करके चली जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ये ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है, और कोई की ताकत ही नहीं है जो ये सारा राज समझा सके, और तुम्हारे में भी एक जैसे नहीं समझते हैं, पढ़ाई में तो नंबर वार होते ही हैं, अभी टाइम भी पड़ा है, तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, साथ करके फॉलो करो। टीचर की पढ़ाई धारण करनी चाहिए, जो कल्याणकारी बच्चे हैं उनको औरों का भी कल्याण करना, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धे कहियो को बाप के साथ लगाओ। जैसे आशुक मासुक होते हैं, भोजन खाते रहेंगे, सामने आशु किसी का लाजा नहीं, वो कोई विकार के लिए नहीं होते हैं। शिकल पर आशुक होते हैं, काम करते रहेंगे, आशुक सामने खड़ा रहता है, गुम हो जाता है। दीदार भी ऐसे ही होता है। तो ये समझ की बात है, जो नवधा भक्त होते हैं उनको फिर दीदार भी हो जाता है, साक्षात्कार भी हो जाता है। बाप पढ़ाते हैं, परंतु बाप को तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो। बाप आते हैं, टीचर बन के पढ़ाते हैं, तो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो बाप रूहों का बाप है उसको रूहानी नेत्र से देखा जा सकता है, तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। और वो रूहानी बाप जिसे जिस्मानी बाप में प्रवेश करता है उसको भी इन आंखों से नहीं समझा जा सकता। कैसे समझते हैं? बाप आकर जो ज्ञान देते हैं उसे ज्ञान की रोशनी से ही समझा जा सकता है। आत्मा को भी तीन आंखों से नहीं देख सकते हम, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, परंतु देखने से क्या फायदा होगा? आत्मा तो छोटा स्टार है, आत्मा को देखने से कोई पद नहीं मिलता है। ये तो पढ़ाई है जिसमें मूल बात है योग की। इसे याद से ही तुम पावन बन सकते हो। तुमको मेहनत भी इसी याद में लगती है। भगवान वाच बच्चे अपन को आत्मा समझो, बाप तो फिर भी कहते रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप तुमको डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। ये भी समझते हो कि सभी तो नहीं चलेंगे, नंबरवार बच्चे हैं, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहेंगे। तुम समझती हो सारी दुनिया कोष घर है, एक दो को कोष करते रहते हैं। ये कोष घर समझ करके ही तो सन्यासी भागते हैं। दोनों की छुरी इकट्ठी चलती है, एक अकेला थोड़े ही विकार में जा सकता है। बाप कहते हैं तुम पवित्र गृहस्थ मार्ग में थे, अभी अपवित्र बन गए, अभी फिर पवित्र बन गए, अभी मैं आर्डिनेंस निकालता हूं, इस काम विकार को जीतो, मां में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकट विनाश हो जाएंगे। तुम धीरे धीरे विकारी बने हो और धीरे धीरे पाप चढ़ते गए हैं। अभी मैं आया हुआ हूं, अभी कोई पाप नहीं कर रहा। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बहुत दंड पड़ जाएगा। बहुत कितना? ज्ञान में आकर के अगर श्रीमद के खिलाफ कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, ये तो यहां की बात है। वो गुरु तो गिराते ही रहते, बाबा तो पावन बनाते हैं, पर तुम पतित कैसे बन गए? बाबा तक समझाते हैं भक्ति मार्ग है ही पतित मार्ग, वहां तो सीढ़ी उतर नहीं होता है, सतो प्रधान से सतो रजोतम होना ही है। ये दुनिया है कांटों का झाड़, पर तुम फूलों के झाड़ में जावेंगे, कोई भी बात में मुझने की दरकार नहीं है कि हम फूलों की धार में कैसे जावेंगे। बाप कहते हैं तुम इस ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अभी बाप ने समझाया है, कितनी अच्छी समझानी देते हैं, उससे कितनी दिल खुश होती है। जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, बाबा निराकार है तो हम भी निराकार बन जा रहे हैं, शांति धाम चले जा रहे। बाप आया ही हमको घर ले जाने के लिए, उनको बुलाया है कि आकर के पावन बना करके हमको अपने घर ले चलो। देखो बाप की ड्यूटी कैसी है, तुम खुद पुकारते हो बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समूह, तुम्हारी आत्मा ही तमो प्रदान हुई है। बाप कहते हैं और सभी बातों को छोड़ दो और कोई संशय में मत आओ, मूल बात है बाप को याद करो, चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बन जाते, शरीर का भान भी न रहे, अपन को भाई बहन समझो। फिर भी क्रिमिनल असाल्ट कर देते हो तो बाप कहते हैं अच्छा भाई भाई समझो, तो तुम नाम रूप में नहीं आवेंगे, इतनी मेहनत करो, मेहनत बड़ी है, कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, मेहनत बगैर थोड़े विश्व के मालिक बनेंगे, इसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे। एकदम तमो प्रधान पाप आत्मा जय मिल जैसे विकारी जो बने हैं वो ही फिर सतो प्रधान पावन बनते हैं। अभी बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जो देवताएं थे उनको ही 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं, क्या जिन्हें 82-83 अथवा कम जन्म लिए हैं उनको 84 जन्मों की कहानी नहीं सुनाते हैं। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। क्या बात हुई? कम जन्म लेने वाले नारायण हैं, वो पूरे चक्र की नाली नहीं लेते, अरे 84 जन्म लेने वाला जो फर्स्ट नारायण है वो ही शरीर रहते रहते पूरी नॉलेज नहीं लेता है, तो बाद में आने वाले नारायण कैसे पूरी नॉलेज लेंगे? वो तो बेसिक नॉलेज में ही शरीर छोड़ देते हैं, एडवांस ज्ञान ले ही नहीं पाते, इसलिए तो बाप कहते हैं आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाए तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखें। तो वो तो डायरेक्ट बाप से सीखते ही नहीं, माया भुलाई देती है। अच्छा मीठे मीठे सीखेंगे बच्चों को रूहानी बाप का याद क्या है? गुड मॉर्निंग। शास्त्रों में तो पुरानी बात ही लिखी हुई है कि बंदरों की सेना ली, ऐसे में नई बात क्या हो गई? अरे बंदरों की सेना नहीं ली, वास्तव में जो बंदर बुद्धि मनुष्य थे इस सृष्टि के स्पेशल मनुष्य थे, बंदर बुद्धि थे। और बंदर कोई एक तरह के नहीं होते हैं, भांति भांति की जाति के बंदर होते हैं, वैरायटी बंदर होते हैं। अब जो तुम्हारी बुद्धि में सो कोई की बुद्धि में नहीं होगा।
फॉरेनर्स भी जैसे बत्थर बुद्धि बन गए, उस समय आगे समझते थे भारत की क्या गति हो गई है, आकर के लेक्चर करते थे। उनको ये पता ही नहीं था कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। अभी बाप ने तुमको समझाया है, तुम देवताएं थे। बाप भारतवासियों को ही आकर के समझाते हैं, उन फॉरेनर्स को आकर नहीं समझाते। भारतवासी ही अपने को हिंदू कहते हैं, एक भी अपन को देवता नहीं समझता, उनकी बुद्धि में आता ही नहीं। हम देवताओं को पूछते हैं तो जरूर देवता धर्म के ठहरे। क्या कहा? जो जिसकी पूजा करते हैं, मानते हैं, नमन करते हैं, तो किस धर्म के ठहरे? कोई क्राइस्ट को पूजते हैं तो किस धर्म के होंगे? जरूर क्रिश्चियन धर्म के रहे। क्राइस्ट को मानने वाले वो कहेंगे क्रिश्चियन। ये देवी देवता धर्म अभी प्राय है लोप हो गया, तुम्हारी बुद्धि में भी अभी आया है। बाप ने बताया आधा कल्प ये ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, अभी संगम युग है। भक्ति भी जोर शोर से चल रही है और ज्ञान भी जोर शोर से चल रहा है। इन बातों को तुम्हारे सिवा और कोई समझ ही नहीं सकता। आगे चलिए, दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। ये थुर है, बाप कहते हैं मैं थुर स्थापन करने आया हूं। क्या है? मैं पत्ते की स्थापना करने नहीं आया हूं। पहला पत्ता स्थापन करने नहीं आया? थुर थुर जो वृक्ष का मोटा तना होता है पहला जड़ों से ऊपर, तो बाप कहते हैं मैं थुर स्थापन करने आया हूं, पत्तों की स्थापना टहनियों की स्थापना करने नहीं आया हूं। माना जो सच्ची का पहला पत्ता है वो स्थापन करने नहीं आया अरे पहले पत्ते की स्थापना तो तुम करते हो, हैं देवताओं हैं, देवताएं हैं जो डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं, ऊंचे से ऊंचे देवताएं वो पहले पत्ते की, पहले नंबर के पत्तों की स्थापना करते हैं। लेकिन मैं तो थोड़े स्थापन करने आया हूं। तो मां में कम याद करो, थुर की स्थापना होगी बाकी सब खलास हो जाएंगे। बीज में पत्ते होते हैं कि नहीं है? बीज में पत्ते होते हैं तभी तो निकलते हैं। अच्छा थुर में पत्ते और टहनियां होती हैं कि नहीं? थुर में भी नहीं होते? होते तो हैं। तो जो अभी स्थापन करने आया हूं वो ही बचेगा और बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो यही पैगाम दो। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ माने कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो, घर घर में ये मैसेज भेज दो, मां एकम याद करो। और कोई धर्म स्थापन करने वाला ऐसे नहीं कहेगा कि मां एकम याद करो, इसलिए उनको मैसेज मैसेंजर या पैगंबर नहीं कहा जा सकता। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं, कहते मां एकम याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। ये पैगाम है बाप का। बाप कहते हैं सिवाय मुझे बाप के और कोई को याद न करो। और पैगाम कितना है, सभी को यह पैगाम देना है। बच्चों को युक्ति है, ये म्यूजियम आदि बनाया है पैगाम देने के लिए। बाप कहते हैं ऊंच से ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे, ये कहां की बात है? साकार दुनिया की बात है, परम धाम की बात तो हो न सके। बाप का ये पैगाम है मैं ऊंचते ऊंच हूं, तमो प्रधान बन, फिर तुम सतो प्रधान बन करके दुनिया नई दुनिया में आ जाएंगे। ये पैगाम देते रहो, तुम पैगाम देने वाले पैगंबर हो। मूल बात यही है, तुम समझेंगे। बाप तो सत्य सुनाते, इसमें कोई असत्य बात तो है नहीं, फिर सत्य समझते जाएंगे। पैगाम तो सब जगह लिख दो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है, तो सब तो प्रधान बन जाएंगे। सारा जोर इस पर देना है। यूरोपियन लोग के लिए इस चक्र और झाड़ में नाली है, उनको यही बताना है चाहिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। पहले पहले कौन आते हैं, तुम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो, फिर सतो प्रधान बन वापस जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पैगाम और कोई दे भी नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। जो भी आते हैं उनको पहले पहले यही पैगाम देना। पावन भी जरूर बनना है, सो तो याद कर से याद से ही बनेंगे। पहली मुख्य बात है याद, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बीती सो बीती देखो, पहले पहले पैगाम ये देना है, बाप आया हुआ। म्यूजियम में कितने आते हैं, आते ही सुनकर आ जाएंगे, वंडर खा देंगे अमरनाथ की, ये कथा सुनाते हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वो अमर लोक है, नीचे मृत्यु लोक है, इस सीढ़ी में समझाए सकते हो। अभी फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबर बार आते हैं, ये सभी बातें समझानी होती हैं। फिर किस प्रकार, कोई किस प्रकार समझाते हैं, बाप भी समझाते रहते हैं। हमेशा समझो कि हमको बाबा समझाते हैं। क्या कोई भी दीदी आदि दादा ही समझा रहे हैं तो भी हम यही समझेंगे हमको बाबा समझाते हैं, हैं? हमको जो समझाने वाला है हम उनको याद करते हैं, उनकी याद रहेगी तो खुशी रहेगी। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये वंडरफुल युगल है। कौन है शिव बाबा? वंडरफुल युगल है, हैं? बाबा भी कहते हैं, यू आर माय बैक। किसको? यू आर माई बाय, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूं। मुझे थोड़े ही माता कहेंगे, मैं तो अडॉप्ट करता हूं। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों में से एक को मुकर्रर करता हूं। क्या कहा? फिर माताओं को संभालने के लिए जो भी अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं उनमें से एक को मुकर्रर करता हूं। उसका नाम क्या देता हूं? है? जिसको मुकर्रर करता हूं माताओं को संभालने के लिए, उसका नाम क्या देता हूं?
जगदम्बा सरस्वती।
ये ब्रह्मा पुत्री तो सबसे बड़ी नदी है, है? दो नाम हो गए, एक ब्रह्मा कुमारी सरस्वती और दूसरी जगदम्बा। तो जगदम्बा बड़ी नदी है, सरस्वती बड़ी नदी है, यह ब्रह्मपुत्री बड़ी नदी है। जगदम्बा सरस्वती जिसका नाम था वो तो अडॉप्टेड बच्ची थी, माताओं को संभालती थी, कन्याओं को। फिर शरीर छोड़ने के बाद क्या पार्ट बजाती है जो संसार में प्रत्यक्ष होती है? जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। वो छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी है? वो तो छोटी मां है। जगदम्बा को छोटी मां कहेंगे? है? हाँ, जगदम्बा को तो बड़ी मां कहेंगे। फिर ओम राधे सरस्वती क्या पार्ट बजाती है? जगदम्बा का पार्ट बजाती है। हाँ, छोटी मां में वैसे भी में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा नदी का पार्ट बजाती है। इसलिए दिखाते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहती रहती है, बहुत बड़ी लंबी नदी, फिर बहती कहां है? ऊंची स्टेज में बहती है, कभी नीची स्टेज में आकर भिखारी भिखारी नहीं बनती है। ये सबसे बड़ी नदी है, सच्ची सच्ची मां तो ये है। पहली अद्वैतवाणी के अंत में क्या बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, जिसको कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। इसको कहते हैं जगदम्बा और जगत पिता को, तमेव माता च पिता आखरीन कौन है, है? जगदम्बा जगत पिता, जगदम्बा तो महाकाली बनती है। महाकाली को सब तो नहीं मानते, मानते हैं है? सब मानते हैं नहीं? तो असल में वास्तव में तुम्हारी जगत, तुम्हारी मां और बाप कौन हुए? भारत माता, वही हमारी माता है। जगत माता को हम भारतवासियों की माता नहीं कहेंगे। जाना तो इस माता को भी है। क्या कहा? कहां जाना है, किसके लिए बोला? जाना तो इस माता को भी है। किस माता को? अरे चाहे छोटी मां ओम राधे सरस्वती हो और चाहे ब्रह्मा माता हो, अब 68 की वाणी है तो कौन सी माता की तरफ इशारा किया होगा? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। जाना तो इस माता को भी है। अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।